gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind, just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-840-9000 905-840-9000
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुड़ सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872
जी हाँ सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा
कौन से काम
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ
बस इतनी छोटी सी बात पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी
मुझे उनका एड्रेस बताओ मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ
जी जी बिल्कुल पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 905-790-7879 दैट इज 905-790-7879
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना मैंने नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
Earmax Hearing Center, call Shiraz 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
Spear & McGay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare kar sakte hain aap Harry Rosen, Burberry or Hugo Boss se. 100% Italian wool suits from $249.99. 100% Egyptian cotton shirts from $29.99. 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga pe. Hum Sundays ko bhi open hain. Zyada information ke liye call kijiye at 905-670-3388 ya visit kijiye hamari website spearandmckay.com.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
جی صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے فہم مظفر آپ کے ساتھ اور ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ آج بھی 9 بجے تک رہے گا۔ پروگرام میں یقیناً آپ کال کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں۔ اور کینیڈا میں میں بین لیونگ ہیئر فار اے لانگ ٹائم، اب آپ کبھی سٹی ٹیکس کے لیے کال کریں یا کسی بھی اور جگہ پہ کال کریں تو مجھے بڑی حیرت ہوا کرتی ہوتی تھی۔ ابھی آپ ٹورنٹو سٹی کو کال کر لیں، آپ کو ایک وائس ریکارڈنگ ملے گی، اور وہ وائس ریکارڈنگ ہے کہ نو ابیوسو لینگویج جو ہے نا، ادر وائز یور کال ول بی ڈراپڈ۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ میرا آپ کا قصور بھی نہیں ہے، شاید کووڈ کے بعد اور بعد کی زندگی میں دنیا اتنی بری طرح سے بدلی ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے مینٹل ڈپریشن، مینٹل کیس ہر انسان ہے۔ تو مگر ظاہر ہے ہمارا جو ایسوسیٹس ہوتے ہیں، اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں، ڈونٹ اس کے ان کے لیے۔ اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں یہ لفظ کیوں کہہ رہی ہوں، مگر یہ میں ایز اے ہول کہہ رہی ہوں۔ آپ ایون اگر آپ بینک چلے جائیں، آئی واز سرپرائز ادر وائز ادر ڈے آئی واز ایٹ دا بینک، اور بینک میں تمام ٹیلرز کے سامنے ایک ریٹن اسکرپٹ پڑا ہوا، اس اسکرپٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ابیوسو لینگویج جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور وہاں پہ اگر کوئی ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے تو رائٹ دیئر وہ اپنی سروس جو ہے وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں اور سیکورٹی کو بیچ میں کال کر لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی بینک پہ چلے جائیں، یو ول فائنڈ دیز اسٹیٹمنٹس۔ یس، ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ کو اگر کوئی آبجیکشن ہے تو آپ اس آبجیکشن کے بارے میں بات کریں۔ میرا خیال ہے ہر ڈپارٹمنٹ ان آبجیکشنز کو یا ان جو آپ کی سجیشن ہوتی ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ جو مینٹل النیس ہے، دس از، مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، وہ جو لوگ ریڈیو پہ ہمیں سنتے ہیں، اور یہ تھا کہ بعض ممالک میں جو خودکشی یا سوسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا اور ینگ جنریشن میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہیومن کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا ہے، دے آر ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود۔ مجھے سچی بات ہے، یہ بات خبر کو شیئر کرتے ہوئے بھی دل خوف کھاتا ہے، کیونکہ ہم اتنے پولرائز ہو گئے ہیں کہ کسی انسان کا انسان کے ساتھ مل کے رہنا مشکل ہی نہیں۔ اور پھر وہ ایک کہاوت ہے نا، کسی نے آپ نے بھی سنی ہوگی، تیجا رلیا تو چگا رلیا۔ یہ جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے چیزوں کو توڑنے میں بڑے ماہر ہوا کرتے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا پروگرام تو وہی ویلیوز پہ بیس کرتے ہوئے پروگرام ہے، مگر یقیناً بی ویلکم فار یور سجیشنز۔ میرے ساتھ بہت اچھے میرے ایسوسیٹس ہیں جو اس اسٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی کوئی سجیشن ہوتی ہے تو آپ اپروپریٹ لفظ میں۔ ایک بات اور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امبیسیز ہوتی ہیں، امبیسیز جو سفارتکار ہیں وہ کسی ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بٹ آئی مائٹ بی رانگ۔ میں آپ ہم تمام ایک ملک کو جب ہم ایک لباس پہن کے، ہاں جب ہم نے اپنا تشخص برقرار نہیں رکھا، سے کہ میں باہر نکلی ہوں اور میرا رنگ بڑا گورا ہے، میری آنکھیں نیلی ہیں، میرے بلانڈ ہیئر ہیں، और मैंने वही वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, तो फिर तो जाहिर है किसी को फर्क ही नहीं पता चलेगा कि ये यूरोपियन है या ये वेस्टर्न है या ये कौन है। वो साउथ एशियन की तो वो धोखा ही नहीं खाएंगे। मगर अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक कल्चर को जिसमें मैंने एक खास लिबास पहना हुआ है और मेरा चेहरा मोहरा भी उसी तरह से है, तो यकीनन वहां पर मैं एम्बेसडर हूं अपने कंट्री की। मिसाल के तौर पे मैं आप इन दिनों अक्सर निकलते हैं और अक्सर आपने कभी देखे, आई डोंट नो, इट्स मी, आई फील सैड, आई फील सॉरी कि जब हम अक्सर हाईवेज पे से निकल रहे होते हैं या किसी सड़क के ऊपर खड़े होते हैं तो बहुत सारी खवातीन हिजाब में बैगिंग कर रही होती हैं, मांग रही होती हैं। आई फील सैड, आई डेफिनेटली फील सैड कि जहां पे हिजाब है दे आर रिप्रेजेंटिंग एक स्पेशल कल्चर, एक मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड जब हम ये कहते हैं कि मैं उस मुआशरे से हूं और मेरी हाँ ज़कात का एक निज़ाम है, कनाडा में किसी को भी कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो डेफिनेटली चीजों को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है, फैमिलीज को हेल्प करता है, दे डोंट लेट एनीबॉडी स्टार्व टू डेथ। तो वो या तो वो लोग हिजाब ना ओढ़ें और फिर वो यहां का रिवायती लिबास पहन के निकलें तो फिर शायद कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, मगर जहां पर उन्होंने एक खास कम्युनिटी या कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उस कल्चर के ऊपर एक स्टिग्मा या एक निशान आता जरूर है। और जब हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूं कि अगर मैं गाली गलोच करूं तो मैं गाली गलोच करके मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रही, वो गाली गलोच, मेरी गाली गलोच उस वोम्ब, उस बतन की पहचान कर रहे हैं, उस गोद की पहचान कर रहे हैं जिसमें मैं रेज हुई थी, यानी जिस माँ ने मेरी परवरिश की थी। और मजे की बात यह है कि साउथ एशियन कम्युनिटी में भी बाज़ोकात हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो चपकलिश होती है, जो गलत तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मत समझिएगा कि वो मेरे और आप में वहां चीज खत्म हो जाएगी, वो डेफिनेटली ट्रांसफर होती है हमारी अगली जनरेशन को भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जुबान में अगर मैं और आप बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं, मैं अपनी स्टूपिडिटी आपके साथ शेयर करती हूं कि हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चा ये, बच्चा ये, बच्चा ये। आप अपने पेरेंट्स को याद करें कि आप कितने बड़े भी हो गए थे, यूनिवर्सिटी में भी चले गए थे, शादी भी हो गई थी, तो माँ बाप तो बच्चा ही समझते, ठीक, क्योंकि वो हमारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक केयर कर रहे होते हैं। मगर यहां का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नजर में देखें तो एक बच्चा जो माँ की बतन में है, वूम में है, वो अपनी माँ की सैडनेस को भी महसूस कर रहा होता है और वो अपनी माँ की हैप्पीनेस को भी, हालांकि दैट चाइल्ड इज नॉट बॉर्न येट, नॉट बॉर्न येट, मगर चार महीने के बाद जब उसकी बॉडी कंप्लीट होती है और छह महीने के बाद जब उसकी ब्रेन की डिवेलपमेंट मुकम्मल होती है तो वो अपनी माँ की हर फीलिंग को बाकायदा महसूस कर रहा होता है, ठीक। तो बाजों का जब बहुत से लोग जो बड़े एब्यूसिव होते हैं वो सिर्फ अपनी पहचान नहीं कर रहे होते, यस वो अपनी पहचान भी कर रहे होते हैं, वो जिस तरह का लिबास पहनते हैं, जिनका उनका जिस तरह का उनका रंग ढंग होता है, वो अपने मुल्कों की, अपनी कौम की शिनाख्त भी कर रहे होते हैं, बट अबव ऑल वो अपनी अपनी उस गोद की पहचान कर रहे होते हैं जिस गोद में, हो सकता है माँ बहुत अच्छी हो सकता है बाप बहुत एब्यूसिव हो, जिसकी वजह से बच्चों ने वो गालियां भी सीखी और वो जुबान भी सीखी। तो बहरहाल खासतौर पे जब आप शादी होती है एक कपल की और जब आप माँ और बाप बन जाते हैं, इवन अगर कंसीव भी किया है, देन थिंक अबाउट इट दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर अ न्यू पर्सन जो कि इस दुनिया में आएगा, और उसकी जो अपब्रिंगिंग है या उसकी तरबियत तब से ही शुरू हो जाती है जब, अब मैं बहुत सी चीजों के बारे में डिटेल में जाना नहीं चाहती बट आई विल मेंशन वन थिंग, इट्स अ जोक, बड़ा जोक है कि जी मुसलमान चार शादियां करते हैं। ये चार शादियां इज नॉट अ जोक, नंबर वन, चार शादियां करने की पहली वजह यह थी कि उस जमाने में जब जंगें हुआ करती थी और सीना बसीना जंगें हुआ करती थी तो माशरे के बीच में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, माशरा कंटेमिनेट ना हो, यकीनन जो बच्चा पैदा हो उसके पास उसकी वल्दियत हो कि किसका बच्चा है, जिसकी वजह से उसकी उसकी जेनेटिक्स आगे चलनी है, नंबर वन ये रीजन था। और यहीं पे फिर इजाजत दी गई कि अगर एक औरत है तो ये नहीं कि उसको सती किया जाए, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो शी कैन गो एंड शी कैन मैरी द अदर पर्सन। इसीलिए आप सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में देख लें, इवन जब किसी औरत का इस तरह से हस्बैंड की डेथ होती है या कोई ऐसा वाकया हो जाता है या उसकी डिवोर्स हो जाती है तो फिर मुआशरे में बच्चे भी चाहते हैं कि हमारी माँ की शादी हो जाए ताकि कंटेमिनेशन मुआशरे के बीच में ये कंटेमिनेशन न बढ़े। तो देयर इज अनदर रीजन जिसको मैं इससे लिंक करती हूँ कि जब एक औरत कंसीव कर लेती है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो यकीनन मर्द के पास एक सेकंड ऑप्शन हो कि ही कैन गो टू हिज सेकंड वाइफ या ही कैन गो टू हिज थर्ड वाइफ, वहां जा सकता है। दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर मस्जिद में जो इमाम्स हैं आप उनसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछिएगा और यकीनन इसके बारे में बात जरूर करें। माजरत के साथ, जब अगेन मैं ये कहती हूँ कि बास चीजें ऐसी हैं कि वो सिखाने की जरूरत नहीं होती, आप जंगल में देख लें या चिड़िया एनिमल्स को देख लें, आप नेचर चीजों को सिखाती है। मगर यहां पर जब तालीम शुरू हुई थी, स्कूल में एजुकेशन शुरू हुई थी, तो बहुत से लोगों ने इस पर एतराज किया था। यस, उसमें हम ये कहते हैं कि कुरान से हट के तरबियत नहीं होनी चाहिए, यानी एलजीबीटी का जिक्र नहीं होना चाहिए। आप कौमे लूत को देखें, और इस कौमे लूत इज रियल एग्जाम्पल थी, ठीक। अच्छा, और जहां पे इस कौमे लूत को डुबोया गया था, आज उस पानी की डेंसिटी, यस अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखते हैं तो उस पानी की डेंसिटी जिसको हम रेड सी या डेड सी कहते हैं, उस पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ डूब ही नहीं सकता अब उस जगह के ऊपर, ठीक। यहां पर कुरान पाक को समझ के पढ़ना, वो तो हमारा अलमिया है कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखती, उर्दू मेरी जुबान है, अरबी मुझको समझ नहीं आती, मगर कुरान पाक माँ बाप ने उर्दू में पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मुझे मेरी वालदा ने तर्जुमे के साथ कुरान पाक सिखाया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फुलफिल इट, बिकॉज मैंने अपने बेटे को कुरान पाक अगर पढ़ाया भी तो एक जिम्मेदारी अपनी पूरी की, आई कुड नॉट टीच हिम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बट यस अरबी में जब पढ़ाया। मगर आजकल के बच्चे अगर अपने लिहाज से कुछ कोशिश करते हैं तो ये शाबाश है उन बच्चों को। तो कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अगर हम बचपन से कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं और अगर हम अहले जुबान होते हैं, अरबी हमें समझ आ रही होती, तो कुरान पाक में एक एक चीज, रिश्ते ताल्लुकात, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन कुरान। तो वो जो 13-14 साल का बच्चा होता है उसको एवरी स्क्रिप्ट समझ आ रहा होता है कि कुरान क्या कह रहा है, कि ताल्लुकात किस तरह नौयत के होने चाहिए, किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए। तो हम बात चीजों को छुपाते हैं, छुपाने की बात नहीं है, कुरान ने खुद एक्सप्लेन किया है। और यकीनन आपको पता ही है कि जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तो उसके बाद फिर जाहिर है बहुत सारे 18 साल के बाद बहुत सारी चीजें फर्ज हो जाती हैं, 14 साल की उम्र में नमाज के लिहाज से और बाकी चीजों के लिहाज से पाबंदी हो जाती है। और अगर हम अहले जुबान होते तो कुरान पाक डेफिनेटली मीनिंग समझ आ रहे होते, तो उसको ये जो मॉरल ऑफ लाइफ, ये जो कुरान जाबता हयात है, उसके हर अल्फाज का मानी समझते हुए उसको पता होता कि माँ के साथ क्या रिश्ता है, बहन के साथ क्या रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का क्या रिश्ता है, मुआशरे में रहते हुए आपने दूसरों के साथ किस तरह निभा करना है, डेफिनेटली उसको हर बात की समझ आ रही होती है। एनीवेज, ये एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ करनी थी, प्लीज डोंट थिंक कि भाई मेरा कोई खास मकसद है, अगेन एक छोटी सी बात थी। आइए साहब, चंद एक इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ लेकर के चलती हूँ। सबसे पहले तो एक मैं दुखदाई न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई माइट बी 4 डेज 5 डेज लेट इन दिस न्यूज, बट आई वॉज डेफिनेटली सैडेंड। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक यंग इंडियन स्टूडेंट का जिक्र किया था जिसका हैमिल्टन से ताल्लुक था और रिसेंटली वो इंडिया से आए भी थे, समथिंग कुमार उनका लास्ट नेम था। I did mention that हैमिल्टन से ये, और इस बच्चे को बड़ा शौक था बीच पे जाने का बड़ा शौक था। और फिर ये हैमिल्टन से ट्रेवल करते हैं, ये टोरंटो में आते हैं, डंडास एंड बे स्ट्रीट, यंग स्ट्रीट के आसपास वो घूमते फिरते भी रहते हैं। 1 बजे के करीब उनका फोन बंद हो गया, ठीक। मगर उसके बाद फिर उनको मिसिंग बताया गया। मिसिंग बताने के बाद में उनकी डेड बॉडी जो है वो बीच के ऊपर पानी के पास से ही मिली थी। ये मेरा ख्याल हार्डली 8-10 दिन पुराना ये वाकया है। आज जब मेरी नजर से गुजरी, ये जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं, अभी अप्रैल के महीने में, 4 अप्रैल वी क्रॉस्ड अप्रैल, May and this is June. I think Mr. Kumar ka jo waqia tha, this was in June. Magar April ke mahine mein char Indian students hain, jinki deaths hui hain. It's very sad. April 4 ko takriban 27 saal ek student tha, jiska naam Dharmesh Katrana. Inka naam tha, Gujarat se inka taluk tha. Ontario mein aur Milano Pizzo pe kaam karta tha. Again, it was a racial, unko mara gaya. Jis shakhs ne unko mara, usne gali galoch ki aur gali galoch karne ke baad unko maut ke ghaat utar diya. Look at this. Again, it's a mental illness. Yani ek insaan ko apne upar kabu hi nahi. Aur bahut se log mere non-Muslim bhai bahan kehte hain, Musalman jihad karte hain. Actually, jihad apne nafs pe control karne ka naam hai. Apne gusse pe control karne ka naam bhi hum jihad. Anything which is against and what is against my will, uske upar control karna is called as jihad. Ye 4 April ka waqia hai jisne 27 saal, young man, very young man, it's very sad. Aur maa baap ne jab yahan bheja Hindustan se, to yakin unhone ek acche mustaqbil ki talash mein bheja tha. But unfortunately somebody made him to sleep forever. Isse pehle wo kehte hain ek aur thi, Arshimlat Randhawa. आपको याद होगा ये वाक्या भी हैमिल्टन का ये वाक्या है और ये भी आई बिलीव इट हैपेंड इन अप्रैल मार्च अप्रैल का ही वाक्या है. और शिमलत रंधावा ये लड़की अपनी बड़ी प्यारी बच्ची और ये अपनी जॉब मैकडॉनल्ड पे जॉब करने के लिए ये जा रही थी. बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई थी और दो गाड़ियां गुजरती हैं. इट वॉज बिफोर इलेक्शन, दिस वॉज बिफोर इलेक्शन, मुझे याद हमने इसको कवर भी किया था. तो एक गाड़ी के बीच में दो लोग ट्रेवल कर रहे थे, दो ग्रुप्स मैं कह सकती हूँ. वहीं गाड़ी के बीच में ही दोनों का आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ जिसकी वजह से गोली चली. गाड़ी का शीशा नीचे था, एक ने दूसरे ऊपर गोली चलाई, शीशा खुला था, गोली पार हुई और ये बेचारी अर्शिमलत रंधावा बस स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई थी. बच्ची को गोली लगी एंड शी डाइड एट द स्पॉट. अप्रैल 25 अप्रैल को ये एक और वाक्या हुआ और ये जना 19 अप्रैल 25 को ये कहते हैं एक और बच्ची थी. ये बच्ची भी ऑटवा में थी और इम्तहान देने के लिए जा रही थी. मगर अब यहाँ देखिएगा, अभी रिसेंटली जो वाक्या हमने आपके साथ मिस्टर कुमार का शेयर किया है, उनकी डेथ भी कहाँ हुई, बीच पे उनकी डेथ हुई. उनकी डेड बॉडी बीच पे पाई गई और एक बजे के बाद उनका टेलीफोन बंद मिला था. हालांकि ही मस्ट हैव कम आउट ऑफ होम. और आजकल के यंग बच्चों के पास तो डेटा बैंक्स भी हैं जिसके पास जिसमें चार्जर्स हैं. 25 अप्रैल को ये भी लड़की एक थी, ये ऑटवा में इस कहते हैं अगले दिन इसका इम्तहान था मगर आई डोंट नो व्हाट हैपन. वेरी सस्पिशियस डेथ है. लास्ट जिसको मैं 19 जून का जिक्र करने जा रही हूँ, ये 19 जून की एक डेथ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. दिस इज सच अ प्रिटी गर्ल, लुक एट दिस गर्ल. दिल्ली स्टूडेंट डाइड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस इन कैनेडा. तानिया अत्तायागी इसका नाम था, इंडियन स्टूडेंट थी, दिल्ली से ये आई थी. मास्टर्स इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी की लड़की कर रही थी कैलगरी में. इसकी सडनली अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस 19 जून को इसकी डेथ हुई है. इंडियन काउंसिलेट ने इसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती ही चलूं तो बहुत बेहतर है. इट्स वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट यू फील. Indian Council ne Tanya Tagi, a young Indian student pursuing the higher education at the University of Calgary, has passed away in Canada under the currently unclear circumstances. The Indian Consulate in Vancouver expressed its condolence and confirmed it is providing support for the family during the devastating time. So, aap support to provide kar lenge, but she will never come back. Look, such a pretty girl, and apna master's ki completion ye kar rahi thi. हजरत की वादा और सडन डेथ हुई है और उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ा. इंडियन कम्युनिटी ऑफ कोर्स एवरीबडी इज शॉक्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज शॉक्ड. इट्स बीन जो मीडिया जब इसको कवर करता है तो वो ये कहता है इंडियन कम्युनिटी इज शॉक्ड. आई बिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेफिनेटली वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी कंसर्न्ड बिकॉज दिस इज नॉट वन केस. वो कहते हैं कि जब कोई चीज नॉर्म बनती चली जाती है तो एवरीबडी मस्ट बी रेडी for the consequences. Behrhal, wo kehte hain, unverified post exclaimed that Tania suffered a heart attack on June 70. It also attacked the Indian Prime Minister office, appealing for the help in operation and remains. I don't know ye kahan tak durust hai aur kahan tak ye galat hai, magar behrhal ye Tania bachi jo hai ye bhi, she was doing her masters. Aur aap sochiyega ki har insaan, har young ke ek khwab hote hain. Ye April se leke ya February March se leke ya ab tak takriban 5 deaths jo hai hamare notice mein, these are all young Indian students. चलिए साहब, ये तो हो गई बात. हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे जरूर तशरीफ लाएं. eawaz.com पे यकीनन आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, इसके अलावा यानी अंग्रेजी का अखबार मिलेगा, उर्दू का अखबार मिलेगा. एक रिपीटेडली मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ कर रही हूं कि अगर आप लोग इफ यू ओन अ बिजनेस, गिव अस अ चांस टू एडवर्टाइज योर बिजनेस. Definitely. My number 647-898-6245. Canada has said that the defy budget is about 5% of GDP. Duljit Dosanjh ki film ke bare mein bhi aaj ke program mein baat karni hai. Sardar Ji Treen. एक खूबसूरत गाना भी आपके साथ शेयर करूंगी हानिया आमिर के साथ. हानिया आमिर को मैंने किस ड्रामे में देखा था, मैंने एक ही ड्रामा देखा था, वो जो आई डोंट नो उसका क्या नाम था, जो आतिफ असलम का एक ड्रामा था, वेरी प्रिटी गर्ल एंड शी वर्कड, जिसमें आज दिलजीत दोसांझ ने उसकी बड़ी तारीफ की है. मैं आपके प्रोग्राम में शेयर करूंगी. आपको याद होगा कि ईरान ये कह रहा था कि अमरीका और इसराइल, अमेरिका ने जो अटैक किया है न्यूक्लियर जो प्लांट्स है, चाहे वो फर्दो का हो या नतन्स का हो या इस्फहान का हो, तो हमने जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो वहां से मूव कर लिया था. मगर आज ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान जनाब इसराइल बकाई, उन्होंने तस्दीक की है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है. अगर आप हमारी वेबसाइट eawaz.com पे आए तो उर्दू सेगमेंट में आपको ये न्यूज मिलेगी भी. उन्होंने अपना इंटरव्यू अल जजीरा के साथ किया और जब उनसे ईरान की एटमी तनसीबात पर होने वाले हमलों से मुतालिक सवाल किया गया तो इस्माइल बकाई ने कहा, जी हां, हमारी जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है क्योंकि इन पर बार बार हमले किए गए हैं. उन्होंने मजीद तफसीलात बनाने से इनकार किया, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज द तकनीकी मामला. किसी ईरानी अहदेदार की जैसे अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी जौहरी तनसीबात को खातिर खान नुकसान पहुंचने का ये पहला बयान है जो अल जजीरा पे शेयर किया गया है. और जबकि अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इब्तदाई अमेरिकन इंटेलिजेंस के अंदाजे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई थी. और मजे की बात यह है कि कल तक हमारा वर्डिक्ट भी यही था जो हमको न्यूज मिलती थी कि बिल्कुल जी वहां डर्ट आपको नजर आई मगर इतना एज सच नुकसान नहीं हुआ था. अच्छा, जब ये मैं आपके साथ जिक्र कर रही हूं तो मैं एक और न्यूज आपके साथ शेयर करूंगी. इन्होंने आज जब उन्होंने शेयर किया है जो ईरान की तर्जमान है अल जजीरा पे, उन्होंने ये शेयर किया है तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल कहा था कि ईरान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर लेगा. वल्लाह आलम बिस्सवाब. मेरा ख्याल है कि जितनी रेजिलियंस इस कौम में पाई जाती है जिंदगी में, 6000 साल में इतने अरसे के बीच में ईरान ने जो सूरत हाल देखी है, ईरान के लोग काफी टफ हैं. मगर जाहिर है ये जो जंग बंदी थी उसको सेलिब्रेट जरूर किया गया था. मगर ऑन द अदर साइड जब अमेरिका ये अनाउंस कर रहा है कि ईरान ने अपनी जो जौहरी प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर लिया है तो अक्वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उनके सरबराह ने कहा है कि ईरान का जौहरी अदम फैलाव के मुहदे NPT जो एक ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफिकेशन है उस पर साइन करना या उससे दस्तबरदार होना इंतहाई अफसोसनाक है. आई विश कि मैं कोट एंड कोट्स में आपके साथ एज सच शेयर करूं, दिस इज नॉट अ न्यूज बाय मी. यानी यकीनन ये तुर्किया के एक जो खबर रसान इदारे है उसके मुताबिक ऑस्ट्रिया की सिक्योरिटी काबीना के इजलास के दौरान एक मुश्तरक का न्यूज कॉन्फ्रेंस, उनमें डायरेक्टर जो ये एटॉमिक एनर्जी है इसके डायरेक्टर जनरल राफील ग्रोसी ने ईरान के NTP एनपीटी जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन उसके इनखला के बारे में कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक होगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में इससे किसी को फायदा नहीं होगा। जाहिर है ईरान हो सकता है अपने दीगर मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करता हो। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि ये इकदाम ईरान की तन्हाई का बायस बन सकता है और जाहिर है जो वहां का रवैया है बाकी इर्द गिर्द के ममालिक पहले भी उसके साथ नहीं है, मगर एनपीटी से जो उसने निकल जाते हैं या दस्तबरदार हो जाते हैं तो कहा जाता है कि जो एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उनकी गलती होगी और ईरान तन्हा रह जाएगा। इसराइल के साथ हालिया तनाजे के बाद ईरान के पास मौजूदा जो एनरिच्ड यूरेनियम के जखायर के बारे में जो सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इन मुकामात पर इंस्पेक्टर्स की वापसी की अवलीन तरजीह है। जाहिर इस वक्त सूरत हाल इतनी नहीं, इट्स नॉट इमीडिएटली पॉसिबल, मगर यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द रब्ता करके ये टीम वहां पहुंचे और अगर कोई तापकारी है वहां पे तो उसके बारे में बात की जाए। जो IAEA के जो रहनुमाओं के रिमार्क्स ईरानी पार्लियामेंट की बुध की सुबह इस वोट के बाद सामने आए जिसमें अकवामे मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ तावन मुअत्तल करने का फैसला किया गया था। ये फैसला अमरीका की तजवीज करता इसराइल के साथ जंग बंदी के नफाज के एक दिन बाद आया। फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से पार्लियामेंट के स्पीकर उन्होंने कहा है कि ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना तावन उस वक्त तक के लिए मुअत्तल कर देगी जब तक जौहरी तंजीमात की हिफाजत की जमानत नहीं। अच्छा, बड़े मुबहम बयान आ रहे हैं। यकीनन मैंने कल भी ये कहा था कि हर अखबार ने अपना बिजनेस को रन करना है और दैट्स हाउ थिंग्स गो ऑन। सुन रहे हैं प्रोग्राम साजोबाज, एक और गुड न्यूज जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। डोनाल्ड ट्रंप की इस जो इंस्टेंट पॉलिसीज हैं और जो उनका रवैया है उसकी बिना पे न्यूयॉर्क ने तो अपना रिजल्ट दे दिया। आपको पता ही होगा कि न्यूयॉर्क में जो नए मेयर जो मुंतखब होने का, बल्कि जनाब एंड्रयू कुओमो उन्होंने उनको कह उनकी अपनी शिकस्त तस्लीम भी की है और उन्होंने इनकी जीतने के बारे में बात भी की है। ये बुनियादी तौर पर युगांडा से ताल्लुक रखते हैं, उससे पहले इनके पेरेंट्स इंडिया से आए थे, तो यानी इंडियन निजाद युगांडन निजाद अब नाउ ही इज अमेरिकन। ही केम टू कैनेडा एट द एज 7, 7 साल की उम्र में ये कैनेडा आए थे और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की जिसमें इन्होंने कहा कि भाई तुम तो वो तो अमीर हो गए जिन्होंने तुम पे हुकूमत की। अब आप इमेजिन कीजिएगा ये बयानिया लगता है किसी तीसरी दुनिया का बयानिया है, बट दिस इज अबाउट अमेरिका, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो अमीर हो गए जिन्होंने आप पे जिनको आपने वोट किया और जिन्होंने हुकूमत की। बिकॉज अगर एंड्रयू कुओमो के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि ही इज अ वेरी रिच मैन, मगर आपको क्या मिला उसके हवाले से। एंड दिस यंग मैन इज वेरी एनर्जेटिक, आई थिंक इज 31 ईयर और 33 ईयर ऑफ एज है, मगर इनकी वालदा वेरी एक्टिव वुमन, वो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में एज ए प्रोड्यूसर काम कर रही है। देन ही गॉट मैरिड विद अ सीरियन गर्ल, उसका भी एक्टिंग की सितारा। और मजे की बात यह है कि जो ये जो जरान ममदानी है ये भी इन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया और ये कॉमेडियन भी रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बल्कि इनके एक दो गीत भी हैं, इन्होंने वो नजम सेठी नहीं है, इन्होंने नजम सेठी के साथ भी गाना, नजम सेठी ने इसको बल्कि इनको इंडोर्स भी किया था, मगर इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान भुट्टो साहब के हवाले से बात की थी। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, आपने कनाडा में भी सुना होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, दे डोंट हैव मनी टू पुट फूड ऑन द ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, तो वहां पर कि ये जो वोटर्स हैं वो तो गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं, मगर जिनको वोट डाला जाता है मेरी, बल्कि कल आई रिस्पेक्ट जनाब हमारे काबिल एहतराम کرامت اللہ غوری صاحب کی میں بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں, تو میں ان سے بھی کل یہی کہہ رہی تھی کہ ہم فٹافٹ پاکستان کا تذکرہ کر دیتے ہیں, مگر آپ دیکھ لیجیے انٹرنیشنل صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو پالیٹیشین ہیں دے آر ویری 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 رچ, اٹس ناٹ اونلی دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز بٹ the politicians in even in these areas are very very rich, whereas جو ووٹرس ہیں وہاں پہ ایک واضح دراڑ بنتی چلی جا رہی ہے. اور 33 ایئرز ان کی ایج جو ہے وہ 33 ایئرز ان کی ایج ہے. اور اینڈریو کوما نے بلکہ اینڈریو کومو جو ہیں انہوں نے ان کی جیت کے بارے میں, کہ آج رات ان کی ہے, ان کی جیت کے بارے میں بیان بھی کر دیا. آف کورس نومبر میں دیکھیے آگے کیا صورتحال نکلتی ہے. یہ میئر کے ممدانی میئر کے الیکشن میں باقاعدہ ڈیموکریٹ امیدوار منتخب ہو گئے ہیں, دس واز دا پارٹ ون. اور نومبر میں ہونے والے میئر کے جو الیکشن ہیں اس میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ کے بڑے شہروں میں شمار ہونے والے, نیو یارک کے قیادت کرنے والے پہلے ہندوستان اینڈ یوگینڈا بیسڈ شخص ہوں گے. مزے کی بات یہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ریلیجن ان اینی تھنگ, نو آئی ڈونٹ. میں اور آپ, ہمارے پہ ریسپانسبلٹی ہے ٹو پروو آور سیلف اینڈ ٹو پروو آور سیلف. اپنے صرف ووٹرس کے اوپر ہم نہیں جیتتے, جیسے کینیڈا میں سسٹم چلا ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں, دو نمازیں پڑھیں, پانچ نمازیں پڑھیں اور آپ سمجھیں گے کہ آپ جیت جائیں گے. یو ہیو ٹو ون ایوری بڈیز ہارٹ. دس مین کانٹریبیوٹیڈ ٹو دا کمیونٹی, اس میں ذات رنگ سے مبرہ ہوتے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کام کیا. یعنی وہ لوگ جو کرایہ نہیں پے کر سکتے تھے ان کے لیے انہوں نے کام کیا, وہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کی فوڈ کے لیے کام کیا. تو بیسیکلی ان کا وہی مقصد تھا. ایک اور چیز, بلکہ وہ کسی نے بڑی پیاری, بی بی سی نے اس کو بڑے پیارے طریقے سے کور کیا ہے, کہ وہ آپ کو یاد ہے امیتابھ بچن کی ایک فلم تھی جس میں وہ ایک کہتا ہے کہ میرے پاس مکان ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. بہرحال انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں, جن کو ووٹ ملا, جن کو آپ نے اقتدار دیا, انہوں نے پیسہ بھی بنایا, ان کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں, آپ نے جن کو ووٹ دیا تھا, جنہوں نے ووٹ دیا تھا آپ کے لیے, انہوں نے کیا کیا. تو اسی پہ بیس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ارب پتیوں کے پاس سب کچھ ہے, عام شہریوں کی باری ہے, لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے وعدے ناقابل عمل ہیں. لیٹ می ٹیل یو, اٹس ناٹ ایزی ٹو چینج دا سسٹم, اٹ از ناٹ ایزی ٹو چینج دا سسٹم. آف کورس ہی ول ڈیفینیٹلی اسٹرگل فار دیٹ. تو ظاہر ہے یہ ہم پہلے جناب صادق صاحب کا ذکر کیا کرتے ہوتے تھے انگلینڈ میں, مگر دس مین از فرام انڈیا, ہی از فرام یوگینڈا, کیم ریزڈ ہیئر. پیدا تو یوگینڈا میں ہوئے تھے مگر یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے کمیونٹی میں والنٹیئر ورک جس حساب سے کیا اور جن پوزیشن سے کام کیا. ان کا پورا نام زہران کوامے ممدانی ان کا نام ہے. 1991 میں یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں یہ پیدا ہوئے تھے. ان کے والد جو ہیں محمود ممدانی ان کے والد ہیں, اور یہ کیپ ٹاؤن میں بھی انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی. پھر انہوں نے نیو یارک کا ایک متوسط آمدنی کا علاقہ تھا جہاں انہوں نے پرویش پائی. فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں ڈیفینیٹلی یہ بات کرتے بھی رہے تھرو تھک اینڈ تھن. 2024 میں ان کی شادی ایک سیرین لڑکی سے ہو گئی تھی, وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے, اور یہ امریکن آرٹسٹ ہے, شامی نژاد ہے, شی از بنیادی طور پہ سیریا سے اس کا تعلق ہے. راما دواجی سے ان کی شادی ہوئی تھی, اور انہوں نے اچھا آپ دیکھیے کام انہوں نے کہاں کیا کیا, فور کلوزر پریونشن اس میں کام کیا تھا. یعنی ایسے شخص کے لیے جو کہ غریب لوگوں کے لیے, فور کلوئر پریونشن کے لیے, یعنی منع کرنا کہ کسی انسان کا اگر وہ کرایہ نہیں دے سکتا تو یہ نہیں کہ آپ اس کو نکال کے باہر کر دیں, دے مسٹ بی اندر وے کہ اس کا کرایہ پے ہو اور اس کے اوپر چھت کے اوپر ضرور رہے, اس کو سڑک کے اوپر جانے کی پریونشن کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. اچھا ایک زمانہ تھا کہ مسٹر ممدانی مسٹر جو تھے یہ مسٹر کارڈیمم کے نام سے پہچانے جاتے تھے. کارڈیمم آپ کو بتائیے الائچی کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ ریپ گانا گایا کرتے ہوتے تھے. آئی وش آئی کوڈ فائنڈ ان کی والدہ, آپ دیکھ لیں جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ہز مدر از زہران ان کی والدہ کا نام ہے, ان کے والد ان کے ساتھ ہیں, ساتھ ان کی وائف سیرین وائف ان کے ساتھ موجود ہے. آف کورس دے آر آل امیریکنز ناؤ, مگر ان کی والدہ نہ صرف ہالی ووڈ بلکہ بالی ووڈ ہو, نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی ایز اے پروڈیوسر کام کرتی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایز اے ریپ سنگر کے طور پر انہوں نے کام کیا. پاکستان کے فنکار میں پہلے بھی ذکر کر سکی ہوں, علی سیٹھی کے ساتھ بھی انہوں نے کسی گیت میں حصہ لیا تھا. میں نے بلکہ عامر سے کہا تھا ان کا کوئی گیت بھی نکال ہی لیں تاکہ ایک انسان کے یعنی ہر اینگل سے انہوں نے کام کیا. اور اچھا پھر انہوں نے مفت بسوں کا کہ اگر کسی کے پاس کنوینس نہیں اور وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے, اگین یہ تمام چیزیں ان اے وے گڈ ہیں. اب پروگرام کی ابتدا میں بھی میں نے مینٹل ایلنس کی بات کی تھی کہ یہ جو ایلینیشن ہے, یہ جو تنہائی ہے, یہ ہمارے ہمیں مینٹلی طور پر سک کر دیتی ہے. تو ان تمام کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. ان کی جو انہوں نے اپنی جو مجھے یاد ہے ابھی اس کے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے, تو ہمارے آفس میں ایک بہت پیارا ہمارا ایسوسیٹ تھا, تو وہ ہمیشہ اگر کبھی ہوتا تھا کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں افلاطون ہی ہوں صرف, بس میں صرف سوچتا ہوں, میں سیریس ہی رہنا چاہتا ہوں, زندگی کو نارمل گزارنے کے لیے ہنستا بولنا بہت ضروری ہے. انہوں نے بلکہ اپنی جو کمپین تھی اس کو بھی بڑا پازیٹیو اینڈ لائٹر موڈ میں کیا تھا. جو اینڈریو کومو سے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو ظاہر ہے آخر دم تک کسی نے کوئی اس کو اناؤنس نہیں کیا. اینڈریو کومو کے اوپر آپ کو بتائیے کہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز بھی تھے, اور اب وہ دوبارہ کوشش, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بنتی بھی نہیں تھی. شروع کی جو ووٹنگ میں اینڈریو کومو جو تھے وہ آگے نظر آئے تھے, مگر پھر آگے آگے جا کے ممدانی جو وہ آگے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری سے دستبرداری کے باوجود کومو نے کہا تھا انہوں نے میئر کے انتخاب میں حصہ نہ لینے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا, حالانکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا مگر وہ میئر کے انتخاب میں آئے تھے. کومو کی حمایت میں ریئل اسٹیٹ والے, پولیس یونین, سابق میئر مائیکل بلومبرگ سارے کے سارے شامل تھے. جو ممدانی ہیں ان کو الیگزینڈر اور برنی سینڈرز, ونڈرفل مین برنی سینڈرز, ورکنگ فیملیز نے ان کو زیادہ تعاون دیا. تو یہ تو تھی ایک صورتحال. آئیے صاحب, ٹائم گزر سے پتا بھی نہیں لگتا, مجھے ایک سپانسر سے بھی ملاقات کرانی ہے, مگر آپ کو میں ایک گیت کی جانب لے کے جانا چاہتی ہوں. نہیں جی, لے آیا. آئی لو یو عامر, تھینک یو ویری مچ. مائی ونڈرفل سن عامر, یگ بچے ہیں جو میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. میں آپ کو اس گیت کے سنانے سے ممدانی صاحب کی آواز میں, ونس ہی واز اے ریپ سنگر اور امریکہ میں, نیو یارک میں, اس کو ان کو مسٹر کارڈیمم کے نام سے اس وقت پہچانا جاتا تھا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا نجم سیٹھی ہے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو انڈورس بھی کیا, ان کے ساتھ گانا بھی گایا. انہی کا جب یہ الیکٹ مسٹر ممدانی میئر آف جو نومبر میں اس کا باقی الیکشنوں کا بھی جو فرسٹ پارٹ آف دا ریس تھا اس میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے, تو ان کا ہی ایک گیت جب یہ مسٹر کارڈیمم ہوا کرتے ہوتے تھے. نانی سماعت فرمائیے صاحب اس گیت کو, اسٹوڈیو کا نمبر 4176001778. You can see Mr. Mamdani. This is Mr. Mamdani. for you.
for your nanny. It's a wrap. Get the grass, spin the rack on your nanny. Spin the rack. Come through, give a dab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. Go ahead, make a rap for your nanny. It's a wrap. Get the grass, spin the rack on your nanny. Spin the rack. Come through, give a dab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny.
आपने ये गीत समाप्त फरमाया और ये गीत इस वक्त के जो हमारे जो नियर जोहरान ममदानी जो हैं कल अपनी रेस जीते हैं. ही इज फर्स्ट इंडियन युगेंडा निजाद अमेरिकन जो 7 साल की उम्र में आए थे और ही वर्क फॉर द कम्युनिटी. दो बातें बड़ी मुझे पॉजिटिव लगी. उन्होंने कहा कि दोस्त जिनको आपने इलेक्ट किया वो तो अमीर हो गए, उनके पास तो रोटी कपड़ा मकान हर चीज है, बस तमाम सहूलियात है, आपके पास क्या है, मैं आपको दूंगा. नहीं, उनकी स्टेटमेंट बड़ी मजे की है, मैं उसको उसी लिहाज से. उन्होंने कहा कि वो जिनको आपने इलेक्ट किया उनके पास सब कुछ है, हर चीज जो आप सोच सकते हैं, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज उनके पास है, आपके पास क्या है. फिर उन्होंने जवाब दिया, आपके पास मैं हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा. अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग, ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट इन फ्यूचर, मगर इन शख्स ने जितने काम किए हैं, यानी गरीब को सड़क पे आने के लिए जो प्रिवेंशंस की हैं, जिन चीजों में मदद की है, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही डेफिनेटली प्रूव्ड हिमसेल्फ. और इन्होंने हर सतह के ऊपर, और जैसे वालदा भी ऑफ कोर्स फनून लतीफा से उनका ताल्लुक है, शी इज एट अ गुड पोजीशन हॉलीवुड बॉलीवुड में एज अ प्रोड्यूसर. वाइफ भी ऑफ कोर्स सीरियन, बट शी इज आल्सो एन आर्टिस्ट. और उनका गाना मैंने आपके साथ शेयर किया और इस गाने में आपने देखा है कि जोहरान ममदानी जो है उन्होंने खुद से परफॉर्म भी किया है और ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया अपनी नानी को. Isn't it nice? It's beautiful. It was beautiful. And of course, this whole program is presented with the help of our sponsors. And we have been able to do this program. We have been able to do this program every Wednesday. We have been able to do this program. आपकी मुलाकात कराया करते थे मोहम्मद सिद्दीक से. कल भी मुझे किसी ने कॉल किया एंड ही सेड अबाउट द लॉ फर्म, बट आई सेड इट्स नॉट अ लॉ फर्म, इट्स अ डेट कंसोलिडेशन का ऑफिस है. एंड दे डू हैव ऑफिसेज इन डिफरेंट प्रोविंसेस, बट इन कनाडा ऑन्टेरियो में इनके ऑफिसेज मुख्तलिफ शहरों में भी हैं. मोहम्मद सिद्दीक इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि यस, हम तो अल्लाह ताला से खुश नहीं, आप कितने खुश हैं. मैं तो भी आपसे कल ही शेयर करी थी, मैं तो परसोल्ला मियां से शिकायत करी थी कि अल्लाह जी जो आपसे डरते हैं उनका आप ख्याल ही नहीं करते, जो डरते नहीं है वो चोरी भी कर लेते हैं, वो फ्रॉड भी कर लेते हैं, वो दूसरे को गाली भी देके चले जाते हैं, आप उनको कुछ कहते ही नहीं है. देखिए, मैं आपसे भी वो बातें नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला तो मेरे दिल के अंदर है ना, वो तो मुझे अंदर बाहर से जानते हैं. मोहम्मद सदीक मेरे साथ है. मोहम्मद सदीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, मुझे बड़ी अच्छी सीटी बजानी आती है. एक दिन मैंने बजाई थी तो उस दिन मैं कहां थी, एक एग्जीबिशन हो रही थी, सारे के सारे आदमी डर गए, दो ने तो कान में उंगलियां डाल ली थी. मोहम्मद सदीक, वेयर आर यू मैन? I don't know. I have no clue. मैं कुछ नहीं कर सकती. एक कमर्शियल ले लेती हूँ, लेट मी ट्राई अगेन, ताकि मैं ये ना कहूँ कि भाई मैंने अपने तई कोशिश नहीं की थी. जिंदगी में रेजिलियंस, मैं कहती हूँ ना कि मैं कभी अपनी जिंदगी को पीछे की तरफ मोड़ के देखती हूँ तो प्रैक्टिकली जिंदगी में फेलियर भी मिला. वो मेरी जिंदगी में वो कहानी बड़ा काम कर गई. आपने पढ़ी थी ना तिमूर और चूंटी? तैमूर और चुंटी. जब तैमूर बादशाह तैमूर हार के आया था तो आपको याद होगा कि फिर उसको कितनी तंगी मिली थी और फिर वो एक खड़ा हो गया था, किसके किनारे बैठ गया था, एक 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 कुआं था तो वो कुएं में लाते डबो के यानी लटका के बैठ गया था और बस इसी परेशानी में था कि सारे फौजी भी भाग गए, मैं अकेला रह गया हूं. और फिर उसने देखना शुरू किया एक चींटी चढ़ी और फिर गिर गई। मैं सोच रही थी उसकी नजर कितनी तेज है, अब मुझे ये ख्याल जरूर आता है। फिर उसने देखा कि चींटी फिर उसने दाना लिया, फिर वो चढ़ी, फिर वो गिर गई। फिर उस तीसरी बार चौथी बार पता नहीं लिखा हुआ था तब कितनी बार वो चढ़ी, अल्टीमेटली वो जी दाना लेके चढ़ गई। और फिर तैमूर ने कहा उसने वहां से अपनी हिम्मत इकट्ठी की और उसने दोबारा अपनी फौजों को इकट्ठा किया और उसके बाद फिर उसने अटैक किया, फिर बादशाहत हासिल कर ली। याद होगा आपको तैमूर और चूंटी। चले मैं आपको एक कमर्शियल ब्रेक, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ लेके चलूंगी, फिर मैं मोहम्मद सदीक साहब से मुलाकात कराती।
भाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप, नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशन सोनिया सोनिया रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दिया ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
अयो इतना खूबसूरत घर,
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो राब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन, टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता न करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं, बहुत मुनासिब दाम है। और भाई आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 416-838-7837
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman, अब Mississauga में दूसरी location के साथ, root canal, white teethening, implant dentistry, dental crowns, wisdom tooth removal, quality dental care पूरी family के लिए, accepting new patients, walk-in and emergency, accepting Canada dental care plan. Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman, 3465 Latanium Drive, Unit 76, Mississauga. Phone 905-820-0900, 905-820-0900. अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 647-923-5659. स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
कैमरा नहीं, लो ऑन को मैंने ऑफ कर दिया। वही डोनाल्ड ट्रंप वाला हाल है, एज के साथ इंसान आधा वैसे ही सठे आ जाता है। अच्छा मोहम्मद सदीक साहब मेरे साथ है। मैंने भी आपको कहानी सुनाई ना तैमूर चूंटी की, मुझे बताएं किस किसने पढ़ी थी वो कहानी। मैंने तो पढ़ी थी तैमूर, मगर मुझे लगता है फिगर्स गलत थे। मैं जब उसको लॉजिकली सोचती हूँ ना, यही तो एक मसला है। मुझे याद है हम अपनी अम्मी जान से कहा करते होते थे, अच्छा हम तो पैदा हुए, हम तो आपके बच्चे हैं, अल्लाह मियां कैसे पैदा हुए। तो अम्मी कहा करती थी, बात सवाल नहीं पूछा करते होते हम, फिर कोई उल्टा सवाल पूछ देते थे, बहुत से सवाल नहीं पूछा करते। मुझे याद है उस जमाने में रातों को शामों को बैठ के हम ये ऐसे उल्टे पुटे सवाल किया करते होते थे। तो अब मेरे दिमाग में ना, यानी वक्त के साथ साथ जब इंसान को शऊर आता चला जाता है तो हम उल्टे पुल्टे सवाल करना शुरू कर देते हैं। आज मुझे ऐसे फिर तैमूर और चूंटी की कहानी याद आ गई, तो मुझे याद आया कि वो गलत कहानी थी। अब देखिए जी, तैमूर की बड़ी उम्र का था, उसकी नजर इतनी की जिंदगी कैसे तेज थी कि वो कुएं के किनारे पे बैठा हुआ था। अब कुएं के फर्श तक उसको कैसे नजर आ रहा था कि चूंटी खजाना लेके उड़ती ऊपर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर ऊपर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, कैसे उसको नजर आया। फिर 72 दफा वो गिरी तो मतलब वेला था, पता हार के बैठा हुआ था ना, दिल टूटा हुआ था, तो उसने अपना दिल लगाया हुआ था किसी तरह। एनीवेज लीजिए साहब, मैंने भी स्ट्रगल कर ली है ना। मोहम्मद सदीक अल्टीमेटली मेरे साथ आ गए। मोहम्मद सदीक अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई, ऐसा कैसी है।
अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये सवाल किया था, आप पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक रखते हैं?
सरगोधा खुशाब।
सरगोधा खुशाब में खजूरों के दरख्त होते हैं, मेरे दिमाग पे आज कल कोई नहीं।
मुल्तान वाले खजूर ले आऊंगा मैं। मैंने ऑलरेडी कह दिया है किसी को।
नहीं नहीं, पक्की खजूरें नहीं मुझे चाहिए, मुझे कच्चे डोके से। पक्की खजूरें तो यहाँ से
कच्चे मिल गया तो मैं कच्चे कह दूंगा।
मतलब ना लेके आना, मतलब मैं आजकल बड़ी कोशिश में हूँ, मतलब आपका नाम लेती हूँ तो पता नहीं मुझे मुल्तान की याद आ जाता है। अच्छा
गर्मी ज्यादा है ना उधर।
अब आपको मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ। आई वेंट टू सऊदी अरेबिया नॉट दिस जनवरी, लास्ट ईयर। यस लास्ट ईयर फरवरी में आई वेंट टू सऊदी अरेबिया फरवरी में। और पता है सऊदी अरेबिया में अक्सर बहुत से इत्तफाकात भी होते हैं, तो मैं ऊपर से देखती थी। जब मुझे रश नजर कम आता था ना, तो मैं दौड़ के हरम में चली जाया करती होती थी। तो मैं वहां से गुजर रही थी तो किसी ने ना मुझे वो खजूर मुझे भूल गई हुई थी, लाल वाली। प्रैक्टिकली वो पोर पोर लंबी खजूर होती है, लाल रंग की कच्ची खजूर, मतलब मीठी, बहुत मीठी। तो मैं जा रही थी उस साइड पे और मैं मुझे एक किसी ने वो दो खजूरें मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब मैंने पिछले साल जनवरी की फरवरी की खाई हुई है, वो याद मेरे दिल में ताजा हुई हुई है। आई विश कि आई कैन गेट इट अगेन। हालांकि वो येलो वाले जो डोके हैं वो यहाँ पे मिलती है खजूर वो वाली, पर मुझे वो लाल वाली याद आ रही है और मुझे पता है वो मुल्तान में, बिकॉज वी लिव्ड इन मुल्तान और माय फादर वंस ही वाज अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर, वी लिव्ड इन मुल्तान। हामिदपुर कनोरा एक जगह हुआ करती होती थी, वहां पे अब्बा जी वाज अपॉइंटेड। तो मुझे खुद भी जाने का बाद में अपनी जब जॉब का दौर था तो तब भी मौका मिला, तो मैंने तब भी वो लाल डोके खाए हुए हैं। हम तो डोके ही कहते थे, पता नहीं उर्दू में डोके को क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन। परसों मुझे किसी ने कॉल किया, उन्होंने आपको भी जरूर कॉल किया होगा। एक बात बेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे कभी आपकी कोई कंप्लेन नहीं मिली, कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिसनर्स को बड़े प्यारे तरीके से आप केयर कीजिएगा। मुझे पता है आपके लिए हर क्लाइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू लुक आफ्टर एवरी क्लाइंट, तो मुझे यकीन है कि यू विल पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू देम। टेल अस अबाउट ऑल डेट सॉल्यूशन, यानी कोई भी किसी किस्म का कर्जा है उसका हल आपके पास है।
जी बिल्कुल भाजी अरफान, पिछले 25-26 सालों से हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को, इसी वजह से कर्जे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके तहत आप अगर डेट इतना हो जाता है आप पे जो आप वापस पे नहीं कर सकते, तो चाहें तो उसको टोटली राइट ऑफ कर सकते हैं, चाहें तो उसको कुछ ऑप्शंस हैं, आप सेटल कर सकते हैं डेट को और रिलीफ लेने के बाद जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो मंथली पेमेंट, उसके मुताबिक हम आपका डेट सेटल कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस कर्जे को, चाहे वो छोटा कर्जा या बड़ा, इसको सीरियस लें, इग्नोर ना करें। क्योंकि मैंने पिछले जो 25-26 सालों में देखा है कि ज्यादातर लोग उस वक्त तक इस चीज को केयर नहीं करते, सीरियस ही नहीं लेते जब तक कि उनके क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट में लिमिट होती है और पेमेंट पे किए जा रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, ऐसे चलते चलते। और सीरियस उस वक्त लेते हैं जब लिमिट खत्म हो जाती है, पैसा इंटरेस्ट में जाया हो चुका होता है और डीप डेट में होते हैं। तो उस टाइम नुकसान क्या है, एक तो आपने अपना पैसा सारा जाया कर दिया इंटरेस्ट में, दूसरा डीप डेट में होने की वजह से जो है मंथली पेमेंट आपकी ज्यादा बनेगी या ऑप्शंस आपके लिमिटेड हो जाते हैं, बैंकरप्सी प्रपोजल की तरफ जाना पड़ता है आपको। और अगर आप इसी चीज को सीरियस लें शुरू से ही, तो ये भी चांस है कि हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब ना हो, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके या लो इंटरेस्ट में इसको कन्वर्ट करवा के हम आपका मसला कर दें। उसके लिए बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं, मे बी 5-10%। 90% लोग उस वक्त आते हैं जब वो ऑलरेडी ये सारा पैसा जाया कर चुके होते हैं। और वो क्यों जाया करते हैं, जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि या तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है या गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो घर बैठे इसको पेमेंट करते रहते हैं। तो कोई भी आपकी सिचुएशन है, चाहे कर्ज आप पे छोटा 10,000 का है, 20 का है, 50 का है, मिलियन का है, अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं, आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, तो एक दफा कॉल करके चाहे फोन पे इन्फॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। प्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना आपने, आए इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद अगर आपको लगे कि आप खुद इसको मैनेज कर सकते हैं तो जहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आप कैसे कर सकता हूँ, आप ये ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप मुझे अपना केस दें और इस चीज की मैं गारंटी करता हूं कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक केस अप्रूव करवा के दूंगा। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपका क्रेडिट एक दफा खराब हो जाता है या ऑलरेडी खराब हो चुका है तो दोबारा क्रेडिट को रीबिल्ड किया जा सकता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना होते हैं, अकाउंट्स खोलना होते हैं, उसमें हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में और आपका क्रेडिट भी रीबिल्ड करवा के देते हैं। इसलिए अगर आप पे कर्जा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं तो कॉल करें 416-671-0577 पे आप कॉल कर सकते हैं। कर्जा चाहे आपका बिजनेस का है, पर्सनल कर्जे हैं, चाहे वो बैंक के साथ कोई क्रेडिट कार्ड हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, या इनकम टैक्स का मामला है सीआरए के साथ पर्सनल, या बिजनेस का जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, कोई सीबा लोन है, स्कैप लोन लिया था पे नहीं कर सके, बीडीसी से लोन कोई लिया हुआ है जो पे नहीं कर सकते, या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था पेमेंट नहीं कर सके या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं ट्रक ट्रेलर्स, तो ये सारे कर्जे हम आपके सेटल कर सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-855-671-0577 या मेरी डायरेक्ट लाइन है 416-671-0577 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी भैया सर
बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सदीक साहब का नंबर 416-671-0577। यू आर अ सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर। एक क्वेश्चन मुझे परसों पूछा गया, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, एक आदमी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कम बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, जिसमें वो स्टिग्मा जो है या वो जो